परम पूज्य गुरुदेव श्री नेम सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हमें धर्मोपदेश का लाभ हो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज।
कोटि सूर्यरन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಆಜ್ ಕೆ ಉತ್ತಮ ತಪೋಧರ್ಮ ಕಿ, ಆಜ್ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ನಾಮ ಹೇ ಉತ್ತಮ ತಪೋಧರ್ಮ. तप भी उत्तम ही होना चाहिए. तप में उत्तमता नहीं है तो इच्छाओं का निरोध नहीं हो सकता. इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं वे बाह्य पदार्थों को निमित्त बना करके उत्पन्न होती हैं. सुन रहे ना, इच्छाएं जब भी आत्मा के अंदर से उत्पन्न होती हैं तो पुद्गल पदार्थ को या चेतन पदार्थ को निमित्त बना करके इच्छाएं उत्पन्न होती, तब ये संसार का खेल इच्छा पर निर्धारित है. और इच्छाओं को साथ लेकर के आत्मा डांस कर रहा है. डांस को रोकने के लिए इच्छाओं को रोकना पड़ेगा और इच्छाओं को रोकना ही तप है. इच्छा निरोधकत्वेन तप्यते इति तपः. इच्छा निरोध के उद्देश्य से जिसको तपाया जाए उसको तप कहते हैं. तप हमारे लिए सहयोग देता है. किसके लिए सहयोग देता है? इच्छाओं को रोकने हेतु वह उस मार्ग पर उस साधक को सहयोग देता है और उनको 12 प्रकार से हमें तपना चाहिए ऐसा कहा है. कितने प्रकार से? 12 प्रकार से. तप के भेद 12 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है. उन 12 प्रकार के तपों को कुछ तप अंतरंग हैं और कुछ तप बहिरंग हैं. बहिरंग को भी स्वीकार करना पड़ेगा और अंतरंग को भी स्वीकार करना पड़ेगा. बहिरंग तपों को स्वीकार करते हैं तो इनको स्वीकार करने का एक मुख्य उद्देश्य भी अपने पास होता है, एक लक्ष्य भी होता है. किस उद्देश्य हम स्वीकार कर रहे हैं? अंतरंग तपों की सिद्धि के लिए बहिरंग तप होते हैं. अंतरंग तपों की सिद्धि के लिए बहिरंग तप होते हैं. और अंतरंग तप क्या है? तो कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना, ये अगर किया जाए तो अंतरंग तपों की पूरी सिद्धि हो जाएगी. वो कौन कौन से हैं? प्रायश्चित. प्रायश्चित कब लेना पड़ता है? इच्छा करके अपराध होने पर प्रायश्चित लेना पड़ता है. इच्छा सभी अपराधों का मूल है। प्रायश्चित क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि हमने इच्छा की थी और उससे कर्म का बंध हो गया था। कर्म आए थे, बंधे थे, और ये हमको बंध और आश्रव इष्ट नहीं है। हम बंध से भी बचना चाहते हैं, आश्रव से भी बचना चाहते हैं, और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनको हम निकालना चाहते हैं। तो प्रायश्चित ले लो। प्रायश्चित भी तप है, और वह तप कर्म निर्जरा का कारण है। किंतु प्रायश्चित लेने से पूर्व ये प्रायश्चित तप करना क्यों पड़ा? ये प्रायश्चित तप, अंतरंग तप क्यों करना पड़ रहा है? इस संबंध में यदि विचार करने के लिए हम बैठ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही पता चलता है कि हमने अपराध किया है, इसलिए प्रायश्चित लेना पड़ रहा है। और वह अपराध कुछ नहीं, इच्छा। इच्छा क्या है? कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ में से कौन सी कषाय है? ये लोभ कषाय है। लोभ, जो लुभ जाता है वो लोभ है, जो लुभाता है वो लोभ है। आत्मा लुभ जाता है और लोभ लुभाता है। लुभने वाला भी है तो लुभाने वाला भी है। लुभने वाला लोभ तो है ही, परंतु लुभाने वाला वो कितना सशक्त है। वह हमारा पूर्व में बंधा हुआ कर्म, द्रव्य कर्म, उसके निमित्त के बिना तो ये आत्मा का लुभना नहीं हो रहा है और द्रव्य कर्म के द्वारा लुभाना नहीं हो रहा है। पुद्गल कर्म, लोभ कर्म, द्रव्य कर्म उदय में आया है और वह उदय में आकर के केवल खड़ा है। उसके प्रभाव को स्वीकार करने वाले कौन? आत्मा। उसके प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा तो प्रभावित हो सकते हैं। अगर तैयार नहीं है तो प्रभावित भी नहीं हो सकते और कर्म का बंध भी नहीं होगा। लोभ कर्म उदय में आकर के खड़ा है। वो आत्मा को कहता है क्या? हे आत्मा, मैं उदय में आकर के खड़ा हूं, तुम लोभी बनो। प्रेरणा देता है? नहीं। पटरी गाड़ी को ये नहीं कहती है कि हे गाड़ी, मैं तो बिछी हुई हूं, चलो ना। पटरी कहती है क्या? नहीं। गाड़ी चलना चाहती है तो पटरी सहायक है चलने के लिए। चलने का जो काम होगा वो पटरी से ही होगा। अगर नीचे पटरी ही नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चल सकती। आत्मा और पुद्गल कर्म का उदय, ये दो हो गए, और बीच में इच्छा। आत्मा, इच्छा और पुद्गल कर्म का उदय। पुद्गल कर्म का उदय जबरदस्ती कर रहा है क्या? हे आत्मा, इच्छा करो, मैं उदय में हूं, कहता है? नहीं कहता है। तो फिर इच्छा कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? लोभ के कारण कर रहा है। गाड़ी क्यों चल रही है? पटरी के कारण। पर पटरी जबरदस्ती कर रही है क्या चलने के लिए? नहीं है। वैसे ही पुद्गल कर्म का उदय, जो कर्म है वह जबरदस्ती नहीं करता है। जीव को लोभी बनो ऐसा नहीं कहता। तुम लोभी बनना चाहते हैं तो मैं लुभाने के लिए तैयार हूं। गाड़ी चलना चाहती है तो पटरी कहती है मैं तुमको चलाने के लिए सहयोग हूं, निमित्त हूं, मैं सहयोग देता हूं, चलो। तो ये संसार का खेल कैसा चल रहा है इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है। संगीत सुनते सुनते बहुत समय हो गया। संसार में नाना प्रकार के संगीत हैं, कहीं कोई चल रहा है, कहीं टोई चल रहा है, नाना प्रकार के शब्द संसार में ही हैं। उधर भी चल रहा है, कल ऊपर से चल रहा था, भर 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 भर। द्रव्य कर्म का उदय आने पर आत्मा को लोभी होना आवश्यक ही है, ऐसा नियम हो सकता है क्या? तो क्या नियम हो सकता है? आत्मा लोभी बन भी सकता है, नहीं बनना चाहे तो नहीं भी बनता। पटरी बिछी हुई है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि गाड़ी को निरंतर चलते ही रहना चाहिए। तो द्रव्य कर्म के उदय में आत्मा लोभी बनने के लिए स्वतंत्र है और लोभ से बचने के लिए भी स्वतंत्र है। पटरी बिछी हुई है तो गाड़ी चलने के लिए भी स्वतंत्र है और रुकने के लिए भी स्वतंत्र है। पटरी हमें जबरदस्ती नहीं करती। भूख लगी है, सामने से थाली परोस करके सामने रख दिया, उसमें विशेष रूप से व्यंजन रखे गए, रखने वाला भी परीक्षा कर रहा है। ये आत्मरूपी गाड़ी चलती है क्या नहीं देखती? सामने रख दिया, उसमें लाड़ू ज्यादा थे, रोटी एक ही थी। अब वो लाड़ू सामने दिख तो रहे, भूख भी लगी है, प्यास भी है, पानी और भोजन दोनों आवश्यक हैं। लाड़ू आपको ये कहते हैं क्या, हमको खाओ, हम तो आ गए हैं तुम्हारे सामने? कहते हैं? नहीं कहते। पानी भी एक लोटा रखा गया है और वह लोटे का पानी भी ये कहता है क्या, तुम प्यासी हो मुझे पियो? लोटे का पानी भी कुछ नहीं कहता और थाली का लाड़ू भी कुछ नहीं कहता और थाली में रखी हुई रोटी भी, लाड़ू मत खाओ रोटी खाओ तब ठीक होगा, ये रोटी कहती है क्या? नहीं। व्यक्ति को भूख लगी है और भूख प्यास को मिटाना है तो कैसे मिटाएं? इच्छा पूर्वक मिटाएं या इच्छा से बचकर मिटाएं? इच्छा से बचकर भी तो मिटाया जा सकता है ना। आसक्ति पूर्वक मिटाएं या अनासक्त होकर के मिटाएं? ऐसा कभी आपने भोजन किया है? महाराज यही नहीं किया, देखो ये मालूम नहीं था आपने बता दिया, कल से ऐसा ही किया करो, अनासक्त हो करके ही भोजन करना। आसक्ति से भोजन करोगे तो तप का विनाश होगा। करो तप, तप किसका नाम है? अनासक्त होकर पदार्थों को ग्रहण करने का नाम तप है। अनासक्ति को तप कहा है। पदार्थ का त्याग तप है ये सर्वथा परिभाषा नहीं है। क्या बता रहा हूं? पदार्थों का त्याग ये तप है ऐसा नहीं है, ये सर्वथा व्याख्यान नहीं है। अनासक्ति पूर्वक विषयों को तप और संयम की रक्षा के लिए ग्रहण करना, इच्छा को निरोध करते हुए ग्रहण करना, ये तप है। इच्छा निरोधो तपः। खाते समय भी इच्छा का निरोध, पीते समय भी इच्छा का निरोध, खाने पीने पीने से पहले भी इच्छा का निरोध, खाने के बाद भी इच्छा का निरोध, सब जगह आसपास में आगे पीछे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सब जगह इच्छा का निरोध होना आवश्यक है। केवल वस्तुओं का त्याग ही तप नहीं है। उत्तम तप क्या है? आसक्ति को छोड़कर वस्तु का ग्रहण करना, यह तप है। और ग्रहण किए बिना तो चलता नहीं। क्या चलता है? खाए बिना चल सकता है क्या? चल नहीं चलता है। और खाते समय इसलिए मौन होकर के खाओ, और जो कुछ आ रहा है उसमें अनासक्त होकर के इच्छा को हटा करके खाते जाओ, ये तप है। खाते समय भी तप है। कितना सरल है? जो सरल है वही नहीं आता, और जो कठिन होता है वो बहुत आता है हमको। महाराज कहो आप 10 दिन उपवास करना, 10 दिन हम उपवास कर लेंगे, लेकिन इच्छा का निरोध होकर के नहीं करेंगे। जैन धर्म सरल है, कठिन किसने बताया? तुम्हारी समझ कठिन है, पर धर्म को समझोगे तो वो सरल ही सरल है। भीतर जितना घुसोगे, जाओगे, विचार करोगे, सरल ही सरल है। इच्छा का निरोध करना, करो ना। और ऐसा इच्छा का निरोध करते हुए हमने एक बार भी भोजन नहीं किया। और इच्छा का निरोध हो इसलिए मौन पूर्वक खाओ, ये कहा है। और आप मौन रह नहीं पाते, क्योंकि मौन रहेंगे तो फिर मांगेंगे कैसे? और कोई कोई तो मौन से खाते हैं, लेकिन उनके हाथ पांव बोलते रहते हैं। उनका सिर बोलता रहता, हाथ पांव बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं कि नहीं? महाराज आपको कैसे मालूम? हमको क्या मालूम नहीं, आप क्या क्या करते हैं सब मालूम। मौन रहना आवश्यक है कि नहीं? किसकी सिद्धि के लिए? उत्तम तप की सिद्धि के लिए। मौन क्यों? तो तप की सिद्धि के लिए। तपस्या केवल ये 10 दिन में ही करना थोड़ी है, ये तो जिंदगी भर करने के लिए कहा है। जैन धर्म का पालन क्या 10 दिन करोगे? 11वें दिन उसको विसर्जित करोगे? और 10 दिन में क्या कर्म निर्जरा कर पाओगे? यहां तो सतत व्यवसाय करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये सतत जिंदगी भर चलना चाहिए, प्रतिक्षण चलना चाहिए। ये परंपरा बना रखा है अपन ने। क्या परंपरा? महाराज चौमासे में 4 महीने कंदमूल का त्याग, आशीर्वाद दो। अरे 4 ही महीने कंदमूल का त्याग, फिर 4 महीने के बाद खाने की इच्छा तीव्र बढ़ेगी। 4 महीने तक दबाया है, और 5वें महीने की प्रतीक्षा है, और जो दबाया है वो एकदम फूट पड़ेगा, डबल पड़ेगा वो। तो 4 ही महीने कंदमूल का त्याग करोगे क्या? फिर 5वें महीने में पाप नहीं लगेगा? 4 महीने ही पाप लग रहा था क्या? और कंदमूल क्या 4 महीने मिलते हैं क्या? वो तो साल भर मिलते हैं। तो कंदमूल का त्याग भी हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसमें अनंत जीवों का घात है, इसलिए कंदमूल का त्याग किया जा रहा है। उसमें अनंत अनंत जीव राशि है, उनकी हिंसा हो रही है। बताया था ना कि एक सुई चुबो दो कास किस में? हाँ, प्याज में या आलू में। प्याज में एक सुई चुबो करके निकाल दो, सुई के ऊपर बादर निगोदिन की जीवों की संख्या, उनके उनके शरीर अनंत अनंत हैं, अनंत शरीर हैं, और उन प्रत्येक शरीरों में अनंत अनंत जीव हैं। एक शरीर और अनंत जीव, एक शरीर और अनंत जीव, एक शरीर और अनंत जीव। शरीर कितने आ गए हैं बाहर? अनंत। कंदमूल में अनंत निगोदी जीव राशि रहती है। इसलिए भगवान को जो हम चढ़ाते हैं ना, निर्दोष वस्तु चढ़ाते, अहिंसक वस्तु, जिसमें जीव नहीं है और घात नहीं होते, घात नहीं होता, जीवों की हिंसा नहीं होती, ऐसे वस्तुओं को कम से कम हिंसा ना हो इसलिए चढ़ाते हैं। क्या नुकसान है? नुकसान हो गया क्या? जीव सहित वस्तु क्या क्या है वहां? बादाम तो सूखा हुआ है, चावल तो सूखा हुआ है, श्रीफल भी सूखा हुआ है, गोला सूखा हुआ है, लवंग सूखा हुआ है। ये सूखे वस्तुओं को हम क्यों चढ़ा रहे हैं? हमारे माध्यम से किसी जीव को पीड़ा ना हो, किसी जीव को दुख ना हो, हम धर्म करें और उसको दुख हो, ये धर्म है क्या? इसलिए हम चढ़ाते समय भी विवेकी बन रहे हैं। क्या चढ़ाना? किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, हिंसा ना हो, ऐसे वस्तु को चढ़ाना, तो भगवान कहेंगे ये ठीक है, ये मेरे भक्त हैं, ये विवेकी भक्त हैं। जो हिंसा से पाप से डरता है वे भगवान के असली भक्त हैं, और पाप से नहीं डर रहा है और धर्म के नाम से ही हिंसा कर रहा है तो वह असली भक्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं तुम धर्म करो। धर्म किसका नाम है? अहिंसा धर्म है कि हिंसा धर्म है? अहिंसा धर्म है। जीवों को पीड़ा पहुंचा करके धर्म कार्य मत करो। पीड़ा ही अधर्म है और पीड़ा से दूर रहना ही धर्म है। पीड़ा से दूर रहकर जिसमें हिंसा नहीं है उसका हम उपयोग करेंगे तो नुकसान होगा, अधर्म होगा, पाप होगा? नहीं, वो तो सूखा सूखा लगता है हमको। नहीं, क्या सूखा सूखा लगता है? सूखा सूखता लगते लगता है कहते कहते सूख रहे हो, धर्म समझ में नहीं आ रहा है। धर्म किसका नाम है? अहिंसा का नाम धर्म, विवेक का नाम धर्म है। अविवेक का नाम धर्म है क्या? हिंसा अहिंसा में जिसको अभी पूर्णतः विवेक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वही अविवेक पूर्ण क्रिया करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और जिनको ज्ञान हो गया है, जिनवाणी पढ़ने से, उपदेश सुनने से दया भाव उत्पन्न हुआ है, धर्म कैसा करना चाहिए, एक एक क्रियाओं में हिंसा अहिंसा का ज्ञान हो गया है, ऐसा व्यक्ति वस्तु को देखेगा क्या? अहिंसा को देखेगा? और अज्ञानी किसको देखेगा? वस्तु को देखेगा। ये अच्छा लगता है और ये बुरा लगता है। भगवान को अच्छा चढ़ाना अच्छा है, और ये जो है ना रूखा सूखा लगता है इसमें क्या है समझ में नहीं आता उनको, कि ऐसे उल्टे विचार होते, उल्टे विचार। और इस विचारधारा में होता क्या है नुकसान? अपना ही नुकसान होता है। अहिंसा धर्म किसका है? अपना था, उसका नुकसान हो गया। हिंसा करी तो बंद हो गया, वो बंद को अब कौन तोड़ेगा? हमको ही तोड़ना पड़ेगा। और हिंसा न करते हुए कोई क्रिया करी तो उससे बंद नहीं हुआ, और करते समय निर्जरा हो गई, तो यहां दोनों तरफ से धर्म हुआ। करते समय में भी बंद नहीं हुआ और कर रहे थे जब निर्जरा भी हो गई, दोनों तरफ से धर्म हुआ। ऐसा धर्म कार्यकारी है। रूढ़ी को मत अपनाओ, विचार को अपनाओ, तर्क को अपनाओ, तर्क के आधार से चलो, रूढ़ी के आधार से नहीं। रूढ़ी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि रूढ़ी में क्या है, अविचारक मार्ग है। अविचारक मार्ग को रूढ़ी मार्ग कहते और विचारक मार्ग को ही धर्म का मार्ग कहते। हर क्षेत्र में इच्छा का निरोध करना है। हमारे लिए कंदमूल अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं तो इच्छा नहीं है क्या? ये इच्छा है। हम इच्छा का निरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा 4 महीने के लिए, क्योंकि इच्छा तो बची है अंदर, छिपा के रख रहे हैं और 4 महीने के लिए छोड़ रहे हैं। देखो ना कैसा है, ऐसा व्यापार किया जाता है क्या? पूरा छोड़ो ना, कम से कम कंदमूल तो छोड़ो, जिसमें अनंत जीव राशि है, महाहिंसा है। अल्प हिंसा को पहला नहीं छोड़ा जाता, महाहिंसा को पहले छोड़ना चाहिए। ये इच्छा का समीचीन इच्छा का निरोध है, इसको कहते हैं सम्यक तप। त्याग करने की एक पद्धति भी है, एक तरीका है। कैसे त्याग करें? पहले क्या बोलते उसको, लौकी को दोधी भोपड़ा, क्या बोलते गिलकी को धोड़का, धोड़का। पहला ये छोड़े क्या, आलू प्याज छोड़े? क्यों? अनंत जीव रहते हैं इसलिए। लेकिन हमारे आत्मा की जो इच्छा है ना, बहुत विचित्र है। वो इतना विचित्र है कि लौकी हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं, लेकिन ये प्याज जो है, ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं? यही विचित्रता है, जिसमें अधिक हिंसा है, अधिक धर्म है, अधिक पाप है, अधिक बंध है, अधिक अहित है, अधिक दुख है, यातना है, उसी को आत्मा की इच्छा चाहती है। ऐसी विचित्र इच्छा है, उसको विवेक नहीं है, आंख नहीं है। इच्छा को आंखें नहीं होती, इच्छा को विचार नहीं होते, इच्छा के पास धर्म नहीं रहता। इच्छा बस दौड़ना चाहती है। इस इच्छा पर अंकुश लगाना, ये सम्यक तप है। किस उद्देश्य से अंकुश लगाना? कर्म निर्जरा के लिए, बंध से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए, और आत्मा को दुख से मुक्त करने के लिए, और परजीवों के उपकार के लिए। देखो, इच्छा का जरा सा विवेक पूर्वक निरोध हो गया तो आलू प्याज का जीवन पर्यंत त्याग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? उन जीवों को जो अनंत अनंत जीव थे, एक सुई के ऊपर अनंत शरीर हैं और प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं, उनके ऊपर उपकार आपके द्वारा हुआ क्या नहीं हुआ? क्या खिलाना शरीर को? महाराज, हम इसलिए त्याग नहीं करते कि बाहर वगैरह जाते हैं तो वहां पर खाना पड़ता है, नया तो उपवास रहना पड़ता है। अच्छा, उसको बहाना बना करके घर में भी खा रहे हो, तो कम से कम घर में तो मत खाओ, इतना तो करो। और यह जीवन भर करोगे तो जीवन भर 10 लक्षण मना रहे हो। प्रतिदिन 10 लक्षण मनाया जा रहा है घर में। जब भी खाने के लिए बैठे, वहां आलू प्याज नहीं दिख रहे हैं। घर में भी आलू प्याज नहीं और थाली में भी आलू प्याज नहीं। घर में रहेंगे तो थाली में भी रहेंगे ही वो। महावीर भगवान कहते हैं यह गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म स्थूल हिंसा से मुक्त रहता है। जहां अत्यंत अधिक जीवों का घात होता है, खाने पीने में, काम करने में, खरीदने में, व्यवसाय करने में, व्यापार करने में, भोगोपभोग वस्तुओं में जो अत्यधिक बड़ी बड़ी हिंसाएं हैं, उन हिंसाओं को रोकना ये गृहस्थ धर्म है। क्या उनको हम रोक पाएंगे, रोकेंगे? देखो ना इच्छा कितनी चालाक है, वो हाँ नहीं कह रही है। इच्छा कितनी चालाक है, वो चुपचाप बैठो महाराज ऐसे पूछते रहते हैं। वो कौन प्रेरणा दे रहा है? इच्छा ही प्रेरणा दे रही है भीतर, वो राजी नहीं होती ऐसे एकाएकी। वो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों को निमित्त बनाकर वह रसनेन्द्रिय को पुष्ट करना चाहती है। इच्छा इंद्रियों के पक्ष में होती है और आत्मा धर्म के पक्ष में होती है। आत्मा को धर्म ही नहीं करने देती ये इच्छा, ऐसी इच्छा है डायन इच्छा। ये इच्छा पर अंकुश लगाना कितना महत्वपूर्ण है और कहां से स्टार्ट होना चाहिए, स्थूल हिंसा से लेकर सूक्ष्म हिंसा तक धीरे 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 बढ़ते जाना चाहिए। स्थूल हिंसा पर तो एकाएक ही ब्रेक लगना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक है। जब लौकी खा रहे, लकड़ी खा रहे हैं और गिल की क्या मोल धोड़का धोड़का खा रहे हैं, तो ये सब खा रहे हैं तो इनको खाते हुए धोखा नहीं है, धोड़का खाते हुए धोखा नहीं है, उसको खाने से तो धोखा है, धोखे में क्यों पड़ रहे हो? इच्छा निरोधो तप, इच्छाओं का निरोध श्रावक भी करता है। कहां पर किसको ब्रेक लगाता है तो एक विधि विधान है, एक संविधान है, रास्ता बताया है, विधि बताया है, उस विधि के अनुसार चलना। घर वालों को भी करो और जर जर शैंपल आप भी खाओ। क्योंकि उनके लिए हम बनाते ही हैं तो ऐसे पाप लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में अपन और अलग से भोजन तो बनाना संभव नहीं है, और उसी में बन गया है तो थोड़ा हम खा लेंगे तो बाकी तुम ज्यादा खाओ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, अपने को तो बचना है, अपने को तो बचना है। जो खाते हैं उनके लिए क्या करें, ये समस्या आती है, तो उनके लिए क्या करें? तो वो स्वयं अपने हाथ से बनाए और अपने हाथ से खाए। हमारा धर्म हम पालन करेंगे, तुम्हारा धर्म तुम पालन करो, झगड़ा हो जाएगा तो घर छोड़ना और इधर आना। ये सबसे आसान तरीका है, झगड़ा हो गया तो इधर आ गए, महाराज जी आलू प्याज खिला रहे हैं हमको, हमको नहीं चलता घर में, तो एक बार दो बार इधर दौड़ के आएंगे ना तो अपने आप वो स्वयं बना करके खाने, क्योंकि हम स्वयं नहीं बनाएंगे तो ये भाग जाएंगे। कुछ तो रास्ता निकालेंगे वो भी, आपको तो उनको रोकना, आपको रोकना है, आपको छोड़ना ही नहीं है। वो आपको भी चाहते हैं और आलू को भी चाहते हैं, उनकी इच्छा डायन इच्छा अलग ही है। ये इच्छा की क्वालिटियां हैं, नाना प्रकार के संसारी प्राणियों की आत्मा में नाना प्रकार की इच्छा होती, दूसरे को भी धर्म करने नहीं देता और स्वयं भी नहीं करता, देखो तो कैसी इच्छा। ये इच्छा नरकायु के बंद के कारण, ये इच्छा बहुत अच्छी, तुमको खाना चाहते हो तो तुम खाना चाहते हो तो खाओ, मुझे मत खिलाओ, हम जो खा रहे हैं वही खाएंगे। ये इच्छा, ये भी एक इच्छा है जो बड़ी हिंसा से बचकर छोटी हिंसा को तो कर रही है, यहां से नरक से छुटकारा मिल रहा है, वहां पर भी नरक से छुटकारा सब कुछ खाते हुए भी मिल सकता है, पर कम से कम जो धर्म करते हुए धार्मिक बनकर व्यवस्थित भोजन कर रहे हैं उनको कम से कम विघ्न न डाले। हिंसा कृत कारित अनुमोदना तीनों से लगती है ना, कृत से भी, कारित से भी, अनुमोदना से भी। अब हम तो खाते नहीं और वो बना रहे हैं कि हमको बनाओ, नहीं उस वस्तु को हम नहीं बनाएंगे। जिस घर में आलू प्याज हो वो जैन घर कैसे, श्रावक घर कैसे, वो तो गृहस्थ का घर है, फिर धर्म नहीं है। क्या है धर्म? किस घर में वास करता है? जिस घर में बड़ी हिंसाएं नहीं है उस घर में धर्म का निवास है। जिस घर में चमड़े के चप्पल नहीं है वो जैन घर है, और जिस घर में चमड़े के चप्पल हैं वो श्मशान है, वो घर नहीं। ये चमड़ा कहां होना चाहिए? प्राणी मरने के बाद उसका शरीर कहां होना चाहिए? श्मशान में। अगर घर में ही रह गया तो घर श्मशान हो गया, और श्मशान में सदा सूतक रहता है क्या? नहीं। तो चमड़े की वस्तु घर में अगर होते हैं तो सदा सदा के लिए सूतक है, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, क्या करोगे? और सूतक आता है तो आप धर्म करना तक छोड़ देते हैं, बहुत गलत करते हैं। मंदिर भी नहीं आते, धर्म तक छोड़ देते। क्या सूतक में धर्म छोड़ने को शास्त्र बोलता है? अरे सूतक को दूर करने के लिए तो धर्म सहायता पहुंचाता है। सूतक है क्या चीज? सूतक के संबंध में क्या विचार हैं आपके? अशुद्धि। तो अशुद्धि कितने दिन की? करो पालन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म को छोड़ करके बैठने के लिए बताया है क्या? नहीं। देव दर्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। सूतक में 10-12 दिन मंदिर छूट जाएगा तो आत्मा और प्रमादी बन जाएगा, 12वें दिन और मंदिर जाने के लिए भाव ही नहीं होंगे। इच्छा है, इच्छा। 12 दिन तक तुम नहीं गए, आप क्या जान रहे हो, चुपचाप रहो यहीं पर। इच्छा ये कहती, धर्म के संस्कार समाप्त होते। मंदिर चूकना नहीं चाहिए, मंदिर चूकना नहीं, भले ही द्रव्य पूजन नहीं कर रहे, भाव पूजन तो करना ही चाहिए, देव दर्शन तो करना ही चाहिए। सूतक आने पर अच्छा लगता होगा कि 10 दिन मंदिर छूट गया। जिसको सूतक आने पर धर्म छूटने से अच्छा लगता है वो धर्म में अनुरागी नहीं है, वो दीर्घ संसारी जीव है, दीर्घ संसारी आत्मा है। स्वाध्याय सुन सकते हैं आप, शास्त्र नहीं छुओ भले ही, लेकिन स्वाध्याय सुनने में क्या दिक्कत है आपको? सभा में आकर के बैठ सकते आप, हाँ हाँ बैठ सकते। भगवान को छूना नहीं, अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, इतना है। आपको दूर बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन? दूर बैठो। हाँ बता सकते हैं, बताओ उसको, बताओ उसको, हमारा सूतक है जरा दूर बैठो। बता सकते कि नहीं? हाँ सीडी, सीडी प्लेयर। हाँ ठीक है, वो इतना सूक्ष्म मत जाओ, इतना सूक्ष्म जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो इतना कितना सूक्ष्म देख रहे हैं और धर्म को इतना सूक्ष्म नहीं देख रहे, इच्छा का निरोध इतना सूक्ष्म नहीं देख रहे। जहां बुद्धि का उपयोग करना चाहिए वहां तो करते नहीं। ये होता है क्रियाकांड में उलझे जीव क्रियाकांड को बड़े बारीकी से देखते हैं, उसमें धर्म समझते। ज्यादा भी सूक्ष्म मत जाओ, यथाशक्ति जितना आवश्यक है उतना। धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए इसमें सूक्ष्म जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमने यही यही करते हुए आए, इसको धर्म समझा है, ये क्रियाकांड को धर्म समझा है। ये क्रियाकांड केवल एक अशुचि से बचाने के लिए था, अशुद्धि से बचाने के लिए था, और यही दिमाग में दिमाग पकड़ा तत्व चिंतन में, आत्म चिंतन में मन ही नहीं लगा। एक व्यवहार सूतक होता है जो शरीर से संबंध रखता है, और एक आत्मा का सूतक होता है जो आत्मा से संबंध रखता है। आत्मा का सूतक विकल्प है और शरीर का सूतक ये छुआछूत वाला बाहर है। आत्मा का सूतक का कभी आपने विचार किया? और मेन वो है आत्मा का सूतक क्या है, वो किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी घटना को लेकर के मन में जो दुख रहता है वो निरंतर चलता रहता है। मरण का, जन्म का और किसी बात का जो सूतक लगता है उसके वजह से मन में एक प्रकार की, एक प्रकार का शोक, एक प्रकार का दुख निरंतर चलता है। कोई मरण किया है तो दुख अंदर होता रहता है। थोड़ा सा इसको पूरा सुन लो सूतक के संबंध में, अच्छे से समझ लो इसको। पहले बाहर का सूतक कितने दिन का? नहीं नहीं मरण का 12 दिन का ये रखा है ना। देखो श्रावक यानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती। श्रावक यानी श्रावक का घर भी है, गृहस्थी भी है, सुख भी है, दुख भी है, संयोग वियोग की बातें वहां चलती हैं। किसी का वियोग हो गया, मरण हो गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वियोग के कारण से कोई गृहस्थ दुखी ना होता हो, और यदि दुखी नहीं होता है तो वो धर्मात्मा है, और दुखी होता है तो उसको समझ कम है अभी, इसलिए दुखी हो रहा है। पर वस्तुओं के संयोग वियोग में हमें दुख मनाना चाहिए क्या सुख मनाना चाहिए? महाराज कहना मुश्किल हो गया, आप क्या पूछ रहे? यानी वियोग में दुखी नहीं होता, समता भाव रखता है, और समता भाव में सुख होता है क्या? नहीं, तो सुखी होता है, वियोग में सुखी रहता है, समता भावी रहता है, उसको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेता। और ये टेंशन कितना खतरनाक है, अगर ज्यादा हो गया, सीमातीत हो गया तो हार्ट अटैक ढब गया, ये भी गया। एक ये अंतरंग सूतक है, इस अंतरंग सूतक के संबंध में क्या आपने कभी विचार किया है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, केवल शरीर का है, छू नहीं, इसमें धर्म समझ रहा है। छुआछूत की अपनी एक सीमा है, वही धर्म नहीं है। भोजन करते समय हम शुद्धि के साथ भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर के ऊपर बैठे कीटाणु भोजन में ना आए, इसलिए हम सूतक का पालन करते हैं, ये शुद्धि का, सोले का पालन करते हैं, सोले का। ये 16 है कि हिंसा ना हो, हिंसा से बचने के लिए बाह्य सूतक 16 है, बाह्य 16 है। डॉक्टर जब अस्पताल में ऑपरेशन करते हैं तो अपने सारे ड्रेस को चेंज करते हैं, अलग ही ड्रेस बना करके आते, वो 16 के होते, उन पर जीव नहीं रहते, जीवाणु नहीं रहते। और जीवाणु यदि रहेंगे वस्त्र पर, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। मरीज के ऑपरेशन के काल में वो रक्त में मिल गए तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, इसलिए ड्रेस बदलना पड़ता है। वहां पर हिंसा अहिंसा के दृष्टिकोण से नहीं, ऑपरेशन को सक्सेस करना है इसलिए, और इसलिए बचते हैं, उन जीवाणुओं से बच रहे हैं। हम भी तो ऑपरेशन ही कर रहे हैं ना, खाते पीते समय तो 16 से खाएं, कहीं छू करके आ गए और उसी वस्त्र पर रह करके आप भोजन कर रहे हैं। 12 महीने का बता रहा हूं, केवल 10 दिन का नहीं, 12 महीने 16 से खाओ, शुद्ध बनाओ, 16 से खाओ। 16 से खाने का मतलब आत्मा का ऑपरेशन। अगर खाते समय कीटाणु, वो जर्म्स, वे जीवाणु पेट में चले गए तो इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं? और 16 से खाने वाले को इन्फेक्शन नहीं होता। नाना प्रकार के विषैले जीवाणु होते हैं और वो वस्त्र पर भी हो सकते हैं, हाथ में भी हो सकते हैं। हाथ धोए बिना खाना, हाथ धोए बिना ही सब कुछ भोजन पदार्थों को परोसना, तैयार करना, हाथ डालना, ये गलत है क्या? नहीं। क्यों गलत है? क्योंकि विषाणु होते हैं और वो विषाणु भोजन में आ जाएंगे, पेट में जाएंगे, पेट में जाएंगे तो वो इन्फेक्शन तैयार करेंगे, इन्फेक्शन का कारण बनेगा, और इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा अस्पताल। 16 से खाने का मतलब है कि हम ऑपरेशन से बचने के लिए हम खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम शुद्धि से खा रहे हैं। हाथ धोकर, धुले हुए वस्त्र को पहनकर, इधर उधर हाथ न लगाते हुए कोई भी भोजन पदार्थ को नीचे पाटे के ऊपर ही रखा जाता है, जिस पर आप पांव देकर चलते हैं वो जमीन है, जमीन पर पांव रख करके चलते, और पानी का लोटा वहीं रख दिया जमीन पर, पांव के परमाणु नीचे जमीन पर है और जमीन के परमाणु लोटे को चिपक गए, लोटा आपने उठा लिया, ऐसा पी लिया और उसी हाथ से भोजन भी कर लिया, पेट में गए कौन से परमाणु? गए पांव के परमाणु। पांव के परमाणु भोजन में गए, इसका मतलब चप्पल के परमाणु और पांव के परमाणु में कोई डिफरेंस नहीं है। खाते समय चप्पल के परमाणु गए अंदर, पांव और चप्पल एक ही बात है। एक जैन घर है, ये जैन घर में भोजन कैसा बनना चाहिए, कितना विवेक रखना चाहिए। रसोई घर में कोई भी वस्तु जमीन के लेवल पर, जमीन पर रखना नहीं चाहिए। अगर रख भी रहे हैं तो एक पाटा बिछा कर, जल से लेकर प्रत्येक सामग्री को पाटे पर ही रखा जाता है, रखना चाहिए। अन्यथा पांव के परमाणु पात्रों को लगकर, पात्रों के परमाणु हाथ को लगकर, हाथ के परमाणु खाते समय भोजन में लगकर, भोजन के परमाणु मुंह में जाकर, मुंह के परमाणु पेट में चले गए। विषैले पुद्गल परमाणु भी होते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। विषैले जीवाणु भी हो सकते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बाहरी सूतक को पालन नहीं, बाहरी 16 को
पालन करने के लिए बताया है। और सूतक 12 दिन का, शरीर की अपेक्षा से देव शास्त्र गुरु का स्पर्श करने के लिए केवल मना है। क्यों मना है? देव शास्त्र गुरु को स्पर्श करने के लिए इसलिए मना है कि अंदर तो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, मरण का दुख है, और दुख ना हो तो भीतर का सूतक है कहां? दुख ही नहीं हो रहा हो, आप ज्ञानी हैं, दुखी नहीं हुए हैं, तो अंदर का सूतक नहीं है। अब आपका बाहर का सूतक मात्र बचा है, वो 12 दिन तक आप पालन करेंगे। क्या? देव शास्त्र गुरु को छुएंगे नहीं, आप उपदेश देने के सुनने के पात्र हैं, आपका मन स्थिर रहेगा, दुख नहीं है मन में, चंचल नहीं है मन, तो आप बैठ करके उपदेश सुन सकते हैं। जिसके मन में दुख होता है, भीतरी सूतक है, वो उपदेश में बैठेगा तो उपदेश सुन नहीं सकता, फिर भी वह कोशिश करता है कि इसको हटाऊं और जाकर के प्रवचन में मन लगाऊं। अंदर के दुख को, विकल्प को हटाने का अगर संकल्प हो तो प्रवचन में मन लगेगा, और ये जाना संभव नहीं है तो प्रवचन में बैठने से कोई मतलब नहीं निकलता। अंदर का सूतक क्या है पता चल गया? क्या? विकल्प। विकल्प, इस विकल्प को देखो, हम बता रहे थे अभी, गृहस्थ के दो गुणस्थान हैं, धर्मात्मा गृहस्थ के, और जिनके पास धर्म नहीं है, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में तो धर्म होता नहीं, तो उनकी बात नहीं, जिनके पास धर्म है, सम्यक दर्शन आदि धर्म जिसने प्राप्त कर लिया है, चौथा गुणस्थान में, पांचवा गुण, दो गुणस्थानों में रहता है। यदि वह गृहस्थ प्रतिमाधारी है तो पांचवें गुणस्थान में रहता है, और चौथे गुणस्थान में रहता है तो वो प्रतिमा के बिना केवल सम्यक दर्शन को पालन करते हुए, आठ मूल गुणों को पालन करते हुए रह रहा है। स्थूल हिंसा का त्यागी बनकर, स्थूल स्थावर हिंसा, कंदमूल आदि, और स्थूल प्राणी हिंसा, जूते के चमड़े आदि, प्राणी हिंसा का पाप लगता है, इसको त्याग करके वह चौथे गुणस्थान में रह रहा है, आठ मूल गुणों का पालन करता है, मध्य मांस मधु से बचा हुआ है, ये आठ मूल गुण हैं उसके, पांच स्थूल अनुवृत और तीन मकार, ये आठ मूल गुण कहलाते हैं। उसके साथ साथ सम्यक दर्शन को, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अटूट विश्वास रख करके और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके वह धर्म साधना करता रहता है, 25 दोषों से बचता है, इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती कहलाता है। ठीक है ना? सुन रहे? चौथे गुणस्थानवर्ती रहता है। इस चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के लिए बताया, देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव मन में अधिक से अधिक दुख धारण करे तो कब तक करे, उसकी भी मर्यादा बताया। अंतरंग सूतक रखें तो कब तक रखें? तो 6 महीने तक रख सकते हो। 6 महीने से ज्यादा अगर गया, तुम्हारा गुणस्थान बचने वाला नहीं है, चौथा बचने वाला नहीं। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के तीव्रोदय में आप नीचे आओगे, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। और यदि प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारी को भी दुख हो सकता है संयोग वियोग में, क्योंकि वहां पर भी शास्त्रों में कहा है आर्त ध्यान 4 हैं, रौद्र ध्यान 4 हैं, तो ये परिग्रह और ग्रह घर गृहस्थी जब तक रहता है 8 ध्यान तो रहते ही हैं। ये 8 ध्यान होते हैं इसलिए अंतरंग सूतक होता है गृहस्थ को, मुनि को नहीं होता अंतरंग सूतक। मुनियों को सूतक है क्या? किसी दिन वो जिस घर को त्याग करके आए हैं वहां पर भी तो मरण होता है ना, वहां पर भी तो जन्म होता है ना, फिर मुनि को सूतक क्यों नहीं? त्याग कर दिया, यानी ये चेतना चेतन परिग्रह को त्याग करके आए हैं तो तत्संबंधी दुख सुख मन में नहीं होते, इसलिए सूतक नहीं है, ये अंतरंग सूतक है। दुख होगा तो अंतरंग सूतक, हर्ष होगा तो भी अंतरंग सूतक। जन्म के काल में हर्ष हो, हर्ष भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। देखो बोलो नहीं, दुख भी हो सकता है और हर्ष भी हो सकता है जन्म को लेकर के, लेकिन मरण को लेकर के दुख ही प्रायः होता है। हालांकि हर्ष होना चाहिए, हर्ष भी हो सकता है, मरने से हर्ष होना चाहिए। क्या मरण करने पर समाधि मरण पूर्वक मरण किया, प्रतिमाधारी दो प्रतिमाधारी किसी का मरण हुआ घर में, तो रोगे क्या? तुमने अपने हाथ से समाधि मरण कराया, कितना सौभाग्य तुम्हारा। खुश होना चाहिए कि हाँ, इसके जीवन को मैंने सफल बना दिया, मरण इसका सफल हो गया, मैंने सहयोग दिया, मैंने सेवा की और इनका पंचम गुणस्थान में ही मरण हो गया। इसके तो आठ ही भव बच गए, अब आठ भव बच गए, अब ये संसार में रहने वाला जीव नहीं है, संसार से मुक्त होगा नियम से। इसलिए मन में खुशी होना चाहिए, और खुशी होता ही है। प्रतिमाधारी का अगर मरण हुआ तो खुशी होता है, और प्रतिमाधारी नहीं है उसका मरण हो गया तो दुख होता है। क्यों दुख हो रहा है ये? क्योंकि ये हमारे लिए सहायक थे, संयोग वियोग की बातें चलती हैं, सहायक थे, अब ये हमारा स्वार्थ चला गया। अयो अयो, अब हमारे लिए कौन देखेगा, कौन संभालेगा, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, ये था संभाल था। और रोते समय देखो सुर लगा करके रोते हैं महाराज, आपको कैसे मालूम? रास्ता चलते चलते सब सुनाई देते हैं, हम सुर लगा करके रोते हैं। अयो चले गए, बहुत अच्छे थे, हेल्प करते थे लेकिन वो ही चले गए सुर लगा करके। रोते कि नहीं रोते? आगे भी रोओगे? नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। चाहे वृत्ति का मरण हो, चाहे अविरति का मरण हो, जिनेंद्र भगवान ने चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावकों को और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों को क्या उपदेश दिया है, वो अविरत हो या विरति हो, उनको नमोकार मंत्र सुनाओ। वृत्ति होता है तो अच्छी तरह से समाधि मरण कराओ, अविरति होता है तो नमोकार मंत्र सुना करके उसको निर्मोही बनाओ, अनासक्त बनाओ, निर्मोही बना करके मरण करने के लिए प्रेरणा करो, उपदेश दो। और मोह छोड़ करके अगर वो मरण करता है तो उत्सव मनाओ, रो नहीं। मरण के काल में भी मत रो और मरण के पश्चात भी मत रो। रोना अज्ञान है, रोना अनजानपना है, जैन धर्म को कुछ समझे ही नहीं। फिर यदि आप रोते हैं तो कैसे धर्मात्मा, कैसे जैनी रो रहे हैं? तो जैन धर्म में रोने का है ही नहीं, जैन धर्म रोने को कहता ही नहीं, करुणा भाव से रोता है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये सुर किस लिए लग रहा है? नहीं, करुणा भाव से रोने वाला अगर वात्सल्य के कारण से आहा हमारा एक धर्मात्मा सहयोगी साधर्मी निकल गए, आंखों में दो बूंद आंसू आ सकते हैं, क्या सुर लगा करके रोते? ये तो गलत है, गलती को गलती मानना चाहिए कि नहीं? तो कम से कम इतना तो मत करो। आंखों में दो बूंद आंसू आती है वात्सल्य के कारण, प्रीति के कारण, अनुराग के कारण, तो क्षम्य है, अब आना भी चाहिए। वात्सल्य था, एक धर्मात्मा धर्म के साथ मरण कर रहा है, मेरे लिए सहयोग था, मेरे लिए सहधर्मी थे, मेरे लिए ज्ञान देते थे, या मेरे लिए बहुत कुछ सहयोग करते थे धर्म के मामले में, इसलिए आपको वियोग का एक क्षण करुणा के कारण दो बूंद आंसू आ सकती, आना स्वाभाविक है। संगीत से नहीं रोना, अगर रोगे तो तबला पेटी भी ला करके यहां रखेंगे, तुम रो हम संगीत पकड़ते लय पर, तबला पेटी भी लाना पड़ेगा फिर, उसको क्यों नहीं लाते? हाँ, अब नकली पना भी नहीं करना चाहिए। ये भाव आता है कि आसपास के मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, वो तो मर गया और हम नहीं रो रहे हैं, ये क्यों सोचते हो? जैन धर्म में रोने का नहीं है, रोने का परमिशन नहीं दिया है, लोगों से क्यों डरते हो? लोगों का विकल्प क्यों लेते हो मन में? बहुत गलत है। लोग कुछ भी कहते हैं उससे क्या मतलब, रो नहीं, शास्त्र की आज्ञा मानो, भगवान की बात मानोगे क्या? लोगों को देख देख करके रोते बैठोगे? नकली रोना भी पाप बंद का कारण है, क्योंकि दिखावा के लिए रो रहे हैं आप। हाँ, मायाचारी कर रहे हैं, फिर मायाचारी से रो रहे हैं। क्यों मायाचारी करना? मरने वाला मर गया और आप मायाचारी उनके वजह से कर रहे हैं। रोने वाला रो गया, मरने वाला मर गया और लोगों के वजह से ये मायाचारी करते हुए बैठे हैं, ये भी क्या जरूरत? महाराज जी तो लोक व्यवहार, लोक व्यवहार इस तरह से मायाचारी करके लोक व्यवहार निभाने को कह रहे हैं क्या? कोई श्रावक को कैसे रहना चाहिए, इसका उपदेश शास्त्र है या लोग हैं? शास्त्र है, शास्त्रानुसार हमें चलना चाहिए। मरण के पश्चात भी हमारी क्रियाएं शास्त्रोक्त हों, मरण के काल में भी शास्त्रोक्त हमारी चर्या हो और मरण से पूर्व भी शास्त्रोक्त चर्या हो। कितने निभाओगे लोगों को? लोगों के वजह से तुम क्या क्या करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? छोड़ो और लोगों को, कोई कुछ भी कहे, अज्ञानी है वो, न जिनवाणी मालूम है, न जिन भगवान मालूम है, न जिन धर्म मालूम है, न जिन गुरु मालूम है, उनको लेकर के क्या करोगे? माते को पटकाओगे उनको? छोड़ो उनको, खुद का देखो, खुद की आत्मा को संभालो। मायाचर नहीं करना, सुर लगाकर कभी रोने का प्रयत्न नहीं करना। अगर उसको लिखा जाए तो कई गाथाएं बन सकती है। समय हो गया? हाँ, 5 मिनट है अभी।
12वें दिन क्या क्रिया करना है वो एक बताइए।
12वें दिन, हाँ वही बता रहा था, वो रह ही गया। हाँ, उत्तम तप धर्म है, जरा अच्छे से टाइट बैठोगे तो तपस्या होगी। चौथे गुण स्थान में 6 महीने से अधिक यदि वियोग का दुख बचता है तो उसका छठा गुण स्थान बचेगा, चौथा गुण स्थान, हाँ चौथा गुण स्थान बचेगा नहीं। चौथे गुण स्थान में 6 महीने से अधिक दुख बचना नहीं चाहिए। 6 महीने तक सूतक अंतरंग का रह सकता है, 6 महीने तक आपका धर्म का घात नहीं होगा, सम्यक्तों का घात नहीं होगा, पर 6 महीने से ज्यादा आगे बढ़ गया तो आप नीचे आएंगे, धर्म का विनाश होगा सूतक के कारण, अंतरंग सूतक के कारण, दुख के कारण, विकल्प के कारण। अब पंचम गुण स्थान का श्रावक प्रतिमाधारी, प्रत्याख्याना वर्णी कषाय का जिनेन्द्र भगवान ने बताया 15 दिन एक पक्ष की मर्यादा है, एक पक्ष, आधा महीना। प्रतिमाधारी को अगर दुख हो गया, हो सकता है, क्यों गृहस्थ ही है वो भी, 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन से अधिक आगे बढ़ गया वो दुख, तो उसका पंचम गुण स्थान नहीं रहेगा। अब ये सूतक का जो विधान किया गया है 12 दिन का, ये पंचम गुण स्थान को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि वो श्रावक धर्म में उत्कृष्ट धर्म है पंचम गुण स्थान का धर्म, उसको ध्येय में रख करके, अविरति को ध्येय में नहीं रखा, पंचम गुण स्थान के श्रावकों को ध्येय में रख करके ये कहा है कि पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक 15 दिन से अधिक अगर संयोग वियोग का या संयोग का दुख अनुभव करता रहता है तो उसका पंचम गुण स्थान नहीं बचेगा, वो चौथे में आएगा। चौथे में आने के बाद 6 महीने तक वो कर सकता है, 6 महीने तक सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। 6 महीने से ज्यादा बढ़ गया तो वही नीचे आएगा, तो धर्म का विनाश हो जाएगा। धर्म को बचाने के लिए पंचम गुणस्थान में कहा, देखो पंचम गुणस्थान वाले का 15 दिन की मर्यादा है, तो कहते हैं 12 दिन का क्यों, फिर 15वें दिवस ही हम छोड़ेंगे दुख को? तो नहीं, कहते हैं 2 दिन पहला ही निपटो, नहीं तो गुणस्थान से तत्काल नीचे आने का मौका आएगा। 2 दिन पहला ही छुट्टी कर दो उस अंतरंग दुखों को, तो 12 दिन अधिक से अधिक 12 दिन, 13, 14, 15, 3 दिन पहले उनको छुट्टी कर दो अंतरंगी दुखों को। वियोग का हो, संयोग का हो, किसी का भी दुख हो, छुट्टी। तो अंतरंग आत्मा को संभालना कितने दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर, 15 तक न जाए। 15वां दिन आ गया और नीचे आ गए तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, गिरने के बाद चढ़ना मुश्किल है ना, क्योंकि पंचम गुणस्थान में जाने के लिए करण करने पड़ते हैं, विशुद्धि चाहिए उसको पुनः जाने के लिए ऊपर, और नीचे गिरने के बाद परिणाम इतने गिर जाते हैं कि पुनः होना बहुत मुश्किल होता है। तो 12 दिन पहले ही निपट जाओ दुखों से, ये कहा। पांचवा गुणस्थान, 12वें दिन से उल्लंघन हो गया तो नीचे आएगा। हाँ, द्रव्य प्रतिमाएं रहेंगे, फिर अंतरंग भावलिंग गिर जाएगा उसका। भाव यानी प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय की जगह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय हो गया तो चौथा हो गया, और वहां 6 महीने की मर्यादा, वहां भी संभल नहीं पाया तो फिर अनंतानुबंधी की बंदी का उदय, और फिर अनंत संसार, धर्म का विघात इस तरह से होता। सूतक बाहर का जो रखा गया है 12 दिन का क्यों पालन करते हैं, इसके पीछे धर्म सिद्धांत है। किंतु ध्यान रखो, बाहरी सूतक तो जब हम स्मशान जाकर उसका संस्कार करके आते हैं तो उस दिन सूतक आता है, स्नान करके आप भोजन करते हैं, स्नान करने तक सूतक है, स्नान करने के बाद आपको बाह्य सूतक नहीं है, इसलिए भोजन कर रहे हैं। क्या ऐसा ही भोजन करते, नहा धो करके करते हैं, तो सूतक से दूर होकर के करते हैं ना। शारीरिक जो सूतक आ जाता है वह वहां से आने के बाद आप स्नान करते हैं तो शारीरिक सूतक दूर हो गया, आप शुद्धि के साथ आप खा रहे हैं, क्योंकि स्मशान में गए हैं, वहां के कीटाणु, वहां के परमाणु हमारे साथ वस्त्र के साथ शरीर के साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, उससे बचने के लिए आप स्नान करते हैं। स्नान करेंगे तो स्वच्छ हो गए, तो वो कीटाणु या वो परमाणु रहे नहीं, अब आप सूतक से, शारीरिक सूतक से मुक्त हो गए, लेकिन अंतरंग सूतक अभी भी है कि नहीं, वो कब तक रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं। 6 महीने भी रह सकता है, 12 दिन भी रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको दुख है ही नहीं। ज्ञानी हो तो कहां है, ज्ञानी को अंतरंग सूतक आता ही नहीं है, ज्ञानी को अंतरंग सूतक नहीं है, अज्ञानी को अंतरंग सूतक कितने दिन खिंच जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो अज्ञानी के लिए या ज्ञानी के लिए अकस्मात मोह के वशभूत होकर के अगर सूतक में पड़ गया, अंतरंग सूतक में, तो कम से कम 12 दिन पहले उसको निपटना चाहिए। मर्यादा बता दिया किसके लिए, गुणस्थान की रक्षा के लिए। 12 दिन पहले पहले पंचम गुणस्थान को सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो गुणस्थान से च्युत होने का नौबत आ सकता है। समझ में आ गया ये सूतक, सूतक ये है। उत्तम तपो धर्म था, बड़ी तपस्या हो गई, जनरल बातें हो गई, आज तप के ऊपर कुछ कहा ही नहीं। उत्तम तप, उत्तम तप क्या है? मुनि जीवन में ही हम उत्तम तप कर सकते हैं, श्रावक जीवन में सम्यक तप हो सकता है सम्यक्त्व के साथ, लेकिन उसको उत्तम तप नहीं कह सकते। मिथ्यात्व के साथ अगर तप कर रहे हैं, सुनो, मिथ्यात्व के साथ अगर तप कर रहे हैं तो मिथ्या तप, गुणस्थान 1, 2, 3 में ये मिथ्या तप होता है यहाँ। और सम्यक्त्व के साथ आप उपवास वगैरह कर रहे हैं, बहिरंग तप, अंतरंग तप, तो ये सम्यक तप है, उत्तम नहीं। उत्तम तप के अधिकारी तो मुनि ही हैं। जब तक अपने जीवन में 3 चौकड़ी नहीं जाएगी, तब तक परिग्रहों में इच्छा भाव होती है। बाह्य वस्तुओं के प्रति जो इच्छा भाव है, वह इच्छा भाव उत्तम तप का घातक है। उत्तम का क्या अर्थ है? देखो सुनो, उत्तमेन अनंतानुबंध्यादि त्रिविध इच्छा रहितत्वेन अनशनादि बाह्याभ्यंतर द्वादश विध तपोभिः आत्मानं तप्यते इति तपः। क्या कहा? उत्तमतापूर्वक अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार की इच्छाएं, इच्छाओं का निरोध करना, इनका अभाव करना, अभाव करते हुए अनशन आदि 6 बाह्य तप और प्रायश्चित आदि ये 6 अंतरंग तप, इन 12 प्रकार के तपों के द्वारा जो आत्मा तपता है वो मुनि का तप है, वह उत्तम तप है जो 3 कषायों से रहित है। मुनि का मन, मुनि की इच्छा बाह्य वस्तुओं को लेकर के कभी नहीं होती। मुनि की इच्छा संज्वलन की इच्छा, ये संज्वलन की इच्छा उपकरण शरीर, गुरु, शास्त्र, भगवान, इसमें भटकती रहती इच्छा। बाह्य पुद्गल पदार्थों में भटक ही नहीं सकती, बाह्य में नहीं भटक सकती है, इसलिए 3 प्रकार की इच्छाएं यहां नहीं है। अब एक संज्वलन की इच्छा है जो देव, शास्त्र, गुरु को, शरीर को, आहार को ये निमित्त बना करके भटक सकती, लेकिन इसका काल अंतर मुहूर्त है। ये इच्छा अंतर मुहूर्त काल तक होती है और अंतर मुहूर्त काल तक होकर के पुनः बदलती है, पुनः अंतर मुहूर्त होती है, इसी में संज्वलन के उदय में ही परिवर्तित होती रहती है, नीचे नहीं गिरती। अगर मुनि महाराज की इच्छा पर पदार्थों में होने लग जाए तो होने के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक उसमें 4 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। पर पदार्थों को लेकर के मुनि महाराज की इच्छा भी उधर जा सकती है। अगर उधर गई और अंतर मुहूर्त तक इसने काम कर दिया तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार तक पहुंचेगा। अनाचार में पहुंचने के उपरांत 6ठे गुण स्थान को छोड़कर नीचे आएगा। जैसे एक मुनि महाराज की इच्छा हो गई, मुझे बाह्य पदार्थ आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है? तो मुझे रहना नहीं हो रहा है, मुझे वस्त्र आदि परिग्रह चाहिए, ऐसी इच्छा हो गई, तो ये अतिक्रम, मन में जो विचार आया वो अतिक्रम हुआ, और विचारों में प्रवृत्ता आई वो व्यतिक्रम हुआ, और उसको ग्रहण करने के लिए निकल पड़े ये अतिचार हुआ, और ग्रहण करके स्वीकार करके जीवन बना लिया ये अनाचार हो गया। अंतर मुहूर्त के अंदर इन परिणामों से मुनि महाराज अगर नहीं संभलते बाह्य इच्छा होने के उपरांत, तो फिर वे गुणस्थान से नीचे आते हैं। ये जैन धर्म की व्यवस्था है, सिद्धांत की व्यवस्था है, आत्मा के परिणामों के गणित गणित की व्यवस्था है, परिणाम गणित है। इसको समझकर मुनि महाराज किससे बचते हैं? तीन प्रकार की इच्छाओं का तो अच्छी तरह से उपशमन करते हैं, उदय में नहीं रहते ये, और एक इच्छा उदय में रहती है जो देव शास्त्र गुरु इत्यादि के प्रति अनुराग इत्यादि होता रहता है, इससे तप का घात नहीं होता। और फिर 12 प्रकार के तप जो मुनि महाराज की होते हैं ना, इस 12 प्रकार के तपों में आहार के प्रति इच्छा त्याग दी, ये उत्तम तप की कोटि में आ गया। ये उत्तम क्यों है? तीन प्रकार की इच्छा नहीं है और एक प्रकार की इच्छा है, और उसका भी यहां वो निरोध कर रहे हैं, इसलिए उत्तम है। इनकी इच्छा का निरोध ये उत्तम है, लेकिन श्रावक की इच्छा का निरोध उत्तम नहीं, वो सम्यक है, सम्यक दर्शन के होने के कारण, और संयम की ओर बढ़ने का लक्ष्य है, धर्म को ही पाना चाहता है, परमार्थ दृष्टि है, इसलिए सम्यक तप है। वही सम्यक तप आगे बढ़ करके उत्तम तप के रूप में कन्वर्ट होता है, ये उत्तम तप धर्म का सारांश है। समझ में आ गया? समय बहुत हो गया। हाँ, किसको? श्रावक को। हाँ हाँ हाँ, इच्छा नहीं है तो दोष लगता है क्या? हाँ ठीक है ना, परिग्रह की इच्छा नहीं तो और अच्छा है। तप जो तपना होता है कर्म निर्जरा के लिए, बाह्य परिग्रह आदि के बढ़ाने के लिए नहीं होता। हाँ, बाह्य वस्तु मिले, बाह्य वस्तु संग्रहित हो, यह उद्देश्य लौकिक उद्देश्य हो गया, फिर वो श्रावक का सम्यक तप भी नहीं रहेगा, वो मिथ्या तप की कोटि में आएगा। बहिरंग वस्तुओं की उपलब्धि के लिए तप आदि करते हैं तो मिथ्या तप है, और कर्म निर्जरा के लिए यदि करते हैं तो सम्यक तप है। और यदि कर्म निर्जरा के लिए करते करते आप तीन कषायों का उपशमन करके तप करने लगते हैं तो वो उत्तम तप है, वो पुरुष पर्याय में ही संभव है, मुनि बनने पर वो संभव। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।
जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो नियम सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो सुपार्श सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज के तप धर्म की जय।